अष्टपाहुर लेक्चर नंबर 5। ओ नमः सिद्धे डबल स चाहिए तस्य हुआ है। हम यहां दर्शन पाहुड़ देख रहे हैं जो अष्ट पाहुड़ का पहला पाहुड़ है, और वह देखते हुए दर्शन किसी को किसको कहना, यह बात देखते हुए हम पेज नंबर 24 पर आए हैं। यहां कहते हैं जो मुनिवरों की अंतर बाह्य निर्ग्रंथ जो दशा है उसको ही यहाँ दर्शन कहा। अब यहाँ दर्शन को अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग रीति से यहाँ उसका कथन कर रहे हैं। तो हम पहले लाइन से पढ़ते हैं क्योंकि पहले 8-10 लाइन हमने पढ़ ली थी। यहाँ दर्शन कहने से मुनिवरों की अंतर बाह्य निर्ग्रंथ मुद्रा का वर्णन लिया है। बाहर का व्यवहार भी निर्ग्रंथ मुनि दशा रूप ही होता है। ये खास दिगंबरों की विशेष पहचान है, इसलिए उसको जोर शोर से बता रहे। निश्चय के साथ व्यवहार की संधि भी योग्य ही होती है। भगवान श्री सिमंदर परमात्मा के समीप जाकर ये क्या कहना चाहते हैं, निश्चय के साथ व्यवहार की भी संधि योग्य ही होती है, यानी क्या? यहाँ पर ये बता रहे हैं, हाँ क्या बता रहे हैं? यथा योग्य होगा, यानी क्या कहना चाहते हैं? निश्चय से अंतरंग में वितरागता होगी तो बाह्य में नग्नता होगी ही होगी। क्यों के जो वितरागी रहे, तीन कषाय चोकड़ी का अभाव हो जाए और बाह्य में वस्त्र पात्र आदि रखे, ख्याल में ना, तो वो पॉसिबल नहीं है और वैसा होगा ही नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि निश्चय के साथ व्यवहार की संधि यानी योग्य, जो मतलब व्यवहार उचित व्यवहार भी होता है। भगवान श्री सिमंदर परमात्मा के समीप जाकर कुंदकुंदा आचार्य देव ने 8 दिन तक दिव्य ध्वनि सुनी। उसमें भगवान ने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया वही मार्ग कुंदकुंदा आचार्य देव ने यहाँ दर्शाया है। अहो मुनि दशा तो अलौकिक है, एक दिन में 2 बार आहार ले या वस्त्रादि रखे, ऐसा व्यवहार मुनि दशा में होता ही नहीं। मुनि दशा दिगंबर ही होती है, तथा मुनिराज दिन में 1 ही बार खड़े खड़े करपात्र में आहार ग्रहण करते हैं। यानी इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि अन्य में कोई ऐसे 2-2 बार आहार करने वाले भी होते होंगे। ज्ञान में क्रमबद्ध का निर्णय किया कि इस भूमिका में इस काल में ऐसा ही ज्ञान और ऐसा ही राग होता है। वहाँ तो ज्ञान राग से भिन्न पड़कर स्वसन्मुख झुक जाता है। किस भूमिका में कैसा व्यवहार होता है, कैसे निमित्त होते हैं, यह विवेक ज्ञान में होता है। जैन मत में अनादि से एक ही मुनि मार्ग है। अभी भी महाविदेह क्षेत्र में यही मार्ग व्यापक रूप से प्रवर्त रहा है। मुनिवर तो मुक्ति के राजमार्ग में चलने वाले हैं। मुनि दशा की मुद्रा तो मानो उपशम रस में ढल गई है, यानी क्या है, उनके बिल्कुल समता वृत्ति होने के कारण शांतता ही होती है, यानी कषायों की भी मंदता होगी भाई, हम बाहर से देखेंगे तो तीव्र कषाय उनके होंगे ही नहीं, और जो तीव्र कषाय है वह मुनि होंगे नहीं। क्या हमारा भी फोटो खींचो ना, ऐसा बोलने वाले होते हैं। और हमने तो ऐसा देखा कि मंदिर में पूजन आदि कुछ चलता होगा और हमको क्यों नहीं बुलाया आपने, मेरे वहीं पर थे, मेरे उपस्थिति में, मैं जब अनुपस्थित हूँ तभी आपने कैसा ये सब चालू किया, तो क्या कहते वो कसाई है या समता वृत्ति वाले हैं। ये जो डिटेल बातें हैं ना, वो हम जब तक उसका अभ्यास नहीं करते हैं तब ख्याल में नहीं आता, और फिर जो है उसके सामने जाके माथा टेकते हैं। कह रहे हैं मुनि दशा की मुद्रा में, मुद्रा तो मानो उपशम रस में डल गई है, बाहर की दशा भी निर्ग्रंथ हो गई है, ऐसा जैन दर्शन का मार्ग है। ऐसी अंतर्बाह्य निर्ग्रंथ दशा रूप जो दर्शन मार्ग है वही जैन धर्म का मूल है। यह बात कानों से सुनने के पश्चात इससे विपरीत दर्शन रहित ऐसे जीव वंदन योग्य नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इसका, क्या बोलते हैं, अभी जो ये बात बता रहे हैं ना उसका हूबहू एक्सपीरियंस अभी हम देवलाली में गए थे वहां हुआ। यहाँ कह रहे ना कि अंतर्बाह्य निर्ग्रंथ दशारूप जो दर्शन मार्ग है वह जैन धर्म का मूल है। यह बात कानों से सुनने के पश्चात इससे विपरीत दर्शन रहित ऐसे जीव वंदन योग्य नहीं। यानी ये जो बताया गया है, देखो एक व्यक्ति हमें मिली वहां पर अभी देवलाली में, वो कह रहे थे कि आप उज्ज्वला जी को मैसेज देना कि हमने उनको बुलाया है, और वो खुद आके मैसेज दे गए। तो उज्ज्वला कहे कि मैं नहीं आऊं। तो जिस व्यक्ति ने हमको यह मैसेज दिया था वो कहते वो कौन है, हमने पूछा तो वो तो आचार्य है। तो पहले में पहले स्त्री पर्याय का जीव आचार्य हो नहीं सकता है ना, वो तो पंचम गुणस्थान वर्ती तक होंगे तो होंगे, कोई भी स्त्री पर्याय का जीव वो थे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। तो ये बात प्रवचन में बहुत बार आई थी, ये स्त्री पर्याय का जीव पंचम गुणस्थान तक जाता है उसके ऊपर नहीं, फिर भी वो दूसरे दिन उधर जावे और फिर मैसेज लावे कि आपको बुलाए, ख्याल में। तो यहां कह रहे ना कि कानों के सुनने के पश्चात इससे विपरीत यानी दर्शन रहित ऐसे जीव वंदन योग्य नहीं है। जिसके कान है वह तो यह मार्ग सुनकर मिथ्या दृष्टि कुगुरुओं को भी कभी वंदन नहीं करता। चल रहा था धुमाधुम। जो कुगुरु कुदेव का पोषण करते हैं वंदन करते हैं, वस्तुतः उन्होंने तो भगवान की बात सुनी नहीं। वास्तव में उनके कानों में जैन दर्शन का मार्ग पड़ा ही नहीं। ये भी बात बताई थी उज्ज्वला ने पूरे प्रवचन में कि हम बालक को बोलते जा बेटा पानी लेके आओ, दो तीन बार बोलने के बाद भी पानी नहीं लाता है तो उसको पूछा गया कि भाई तूने पान सुना नहीं क्या? तो बोलते हाँ सुना ना, आपने तीन चार बार बताया। तो क्या वह सुनना सुनना है? तो कहते नहीं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि वास्तव में उनके कानों में जैन दर्शन का मार्ग पड़ा ही नहीं, क्योंकि जो भगवान ने बात बताई है ना, वो उसने सुनी ही नहीं। यानी जिसको हम कहें ना, अभी तंतोतंत उसका हमको अनुभव आया, यहाँ जो बात चल रही है। तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान ने समोसरण में गणधरादिक शिष्यों के लिए धर्म का उपदेश किया है। कैसे धर्म का उपदेश किया है? कि दर्शन जिसका मूल है, ऐसे धर्म का अंतर में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव, और बाह्य में दिगंबर मुद्रा, ऐसी मुनियों की दशा है, वह दर्शन है और धर्म का मूल है। जैसे नींव के बिना मंदिर नहीं होता, तथा जैसे मूल के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। क्या कहा? ये तो बहुत बार हमने सुना भी है, मालूम भी है। अतः धर्म का मूल दर्शन है। देखो यह जैन मार्ग दस प्रकार के सम्यक दर्शन में भी एक मार्ग सम्यक तो आता है, अर्थात जो निर्ग्रंथ मुनि मार्ग है उसकी प्रतीति यानी श्रद्धा रखे। मुनियों को अंतर में तीन कषाय चोकड़ी का भाव हो गया होता है, आत्मा की आनंद दशा वृद्धिगत हुई है और देह संबंधी राग का भी नाश हो गया है। अतः वस्त्रादि परिग्रह की वृत्ति भी नहीं होती, ऐसा मुनि मार्ग है, यही दर्शन मार्ग है। यहाँ मात्र अकेली बाह्य दिगंबर दशा की बात नहीं है, किंतु अंदर अंतर आत्मा की छठे सातवें गुणस्थान में झूलती वीतराग दशा पूर्वक सहज दिगंबर दशा हुई है। यानी बाह्य में नग्नता है उसकी बात नहीं, तो साथ में अंतरंग में स्थिरता रूप जो वीतरागता है वह भी आवश्यक है। उसे ही वीतराग मार्ग में दर्शन कहा जाता है, ऐसा ही मार्ग है। इससे विपरीत हो तो वह मार्ग नहीं है, अर्थात वे मुनि योग्य वंदनीय नहीं है। वीतराग मार्ग के ऐसे मुनियों की ही को ही सच्चा मानकर वंदन करें, और इससे विपरीत मिथ्या दृष्टि को वंदन न करें, तो यह कोई क्लेश का कारण नहीं है। जैसे पुत्र अपने पिता को वंदन करता है पर गांव के अन्य पुरुषों को वंदन नहीं करता, इससे वह कहीं अविनयी नहीं हो जाता। क्या कहा, समझ में आया? लोग क्या कहते हैं, अरे भाई तुम उसको वंदन करो ना, तुम मानो मत पर वंदन तो करो, वो तो अपने से तो उच्च है, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अपने पुत्र अपने माता पिता को वंदन करता है और अन्य किसी गांव के पुरुषों के वंदन नहीं करता है, तो इसलिए वो अविनयी है, ऐसा थोड़ी है। अभी कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा भगवान है हमारा भी भगवान है, तो हमारे भगवान को क्यों नहीं नमस्कार करता है? अरे प्रभु तेरा भगवान है ही नहीं ना, उसको क्या नमस्कार करें? भगवान के लक्षण उसमें है ही नहीं, तो तुम तो उसका अपमान कर रहे हो। अरे अपमान इसका होता है जिसका मान होता है, यानी जिसके कोई विशेषता है। लोग तो डीपली थिंकिंग करते ही नहीं और बाय में होहा होहा में अटक जाते हैं। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, जैसे पुत्र अपने पिता को वंदन करता है और गांव के अन्य पुरुषों को वंदन नहीं करता, इससे कहीं अविनय नहीं हो जाता। लेकिन अभी तो जमाना ऐसा खराब हो गया है कि किसी यहाँ के मान लो कि अपने नेताओं में से किसी का बाप मर जाए तो सबको उसको नमस्कार करना चाहिए, उसकी पत्नी मर जाए तो उसकी भी सबको छुट्टी देनी चाहिए, दुख होना चाहिए, ऐसा चल रहा है ना। और तुम नहीं करो तो अभी नहीं हो गए ऐसा। वैसे ही धर्मात्मा अपने धर्म पिता ऐसे गुरुओं को ही वंदन करते हैं, अन्य कुगुरुओं को वंदन नहीं करते, तो यह कोई क्लेश का कारण नहीं है। यह तो सत्य मार्ग क्या है उसकी बात है। कुमार्ग को मानने वाला तो वीतराग मार्ग का शत्रु मिथ्या दृष्टि है। जो वस्त्र सहित मुनिपना मनवाते हैं वे कुगुरु हैं, और जो ऐसे कुगुरु का आदर करता है, वंदन करता है, वह भी मिथ्या दृष्टि है, उसे जैन मार्ग की श्रद्धा नहीं है। हे सकर्ण पुरुषो, सनातन जैन मार्ग में दर्शन का स्वरूप सुनकर दर्शन से जो विपरीत हो वह वंदन योग्य नहीं है। भगवान ने शिष्यों को जो मार्ग बतलाया था वही मार्ग यहाँ कुंदकुंदा आचार्य ने संक्षिप्त में बतलाया है। जो इस मार्ग से विपरीत मार्ग को मुनि दशा मनवाते हैं, कुमार्ग को जैन मार्ग मनवाते हैं, वे पुरुष मार्ग से भ्रष्ट होकर कान रहित हो जाएंगे। ये कान रहित हो जाएंगे का मतलब क्या है सौभाग चंद जी? कान रहित हो जाएंगे, सुनेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी है? नहीं, वो बात नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो कान रहित हो जाएंगे, अभी की बात नहीं है, भविष्य की बात है। हाँ, अच्छा, चार इंद्रिय होगा तो नहीं चलेगा? यानी वो हाँ एकदम विकलत रह हो जाएगा, या मान लो एक इंद्रिय हो जाएगा, जो भी है। जिसके कान हैं वो कितने इंद्रिय वाला जीव है? पंचेंद्रिय। यानी अभी पंचेंद्रिय होते हुए भी वो कान का उपयोग नहीं कर रहा है, यानी किस लिए? सत्य बात सुनने की। तो आगे जाके क्या कहेंगे? वो कान रहित हो जाएगा। ख्याल में आया? वो हमारे जतीश भाई जी है ना, वो भी कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, बोलते भी हैं कि अभी आपके पास इतना धन है और आप अपने हाथ से सत्पात्र दान नहीं करोगे तो हाथ रहित हो जाओगे। यानी क्या होगा? ईयड़ हो जाओगे। ईयड़ समझते हैं? लट लट। तो कभी कभी इसका दुरुपयोग भी किया जाता है कि लोगों से पैसा इकट्ठा है तो ऐसी ऐसी भाषा वापर के लोगों से पैसा इकट्ठा करते लोग। अब वो कहाँ जाएंगे लिखा नहीं है इसमें, इतना जरूर लिखा है कि कान से रहित हो जाओगे। यानी अब जिनेन्द्र भगवान जो बात बताना चाहते हैं वो सुनकर भी अनसुनी कह रहे हैं, कर रहे हो तो क्या होगा? कान रहित हो जाओगे। जिसको अंतर में तीन कषाय झोपड़ी का अभाव होता है उसकी बाह्य मुद्रा भी नग्न दिगंबर ही होती है। अभी हमने देखा ना, जहाँ निश्चय है वहाँ उचित व्यवहार भी होता है। अहो, मुनिवरों ने तो अंतर में केवल ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ किया है, उसे ऐसा आनंद उछलता है कि मैं मुनि दशा में हूँ और अभी केवल ज्ञान प्राप्त करूँगा, ऐसा राग भी नहीं उठता। बारंबार ऐसे निर्विकल्प दशा में झूलते हैं, उनको बाह्य में दिगंबर दशा सहज हो जाती है, ऐसी मुनि दशा है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि मैं मुनि दशा में हूँ और अभी केवल ज्ञान प्राप्त करूँगा, ऐसा राग भी नहीं उठता है उनके, इनके मुनियों के। क्यों? कि उनकी दृष्टि पर्याय पर नहीं है, वह तो त्रिकाली स्वभाव में ही एकाग्र हो गए हैं, इसलिए उनके शुद्धोपयोगी चालू है ना भाई। केवल ज्ञान प्राप्त कैसा होगा? छठे सातवें में रहते हुए नहीं होगा। तो स्वरूप में स्थिरता करके जो श्रेणी चढ़ जाएंगे उन्हीं को वो पॉसिबल है, इसलिए पर्याय पर दृष्टि नहीं रखेंगे। बारंबार ऐसी निर्विकल्प दशा में झूलते हैं, उनको बाह्य में दिगंबर दशा सहज हो जाती है, ऐसी मुनि दशा है। ऐसी मुनि दशा ही दर्शन का मार्ग है, यही जैन मार्ग है। जैन धर्म का मूल तो यह दर्शन है, इससे विपरीत मार्ग वह जैन मार्ग नहीं है, इस कारण वह वंदनीय नहीं है। वंदन नहीं करने से दूसरों को बुरा तो लगे, बुरा लगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से वेश्या ये वेज है ये वही नहीं, वेश्या को बुरा लगे इसमें इसका क्या दोष है। शराब का निषेध करने वाले से कलाल यानी शराब बेचने वाला उसको बुरा लगे तो इसमें इसका क्या दोष है। वैसे ही कुमार्ग का निषेध करके सच्चे जैन मार्ग का प्रतिपादित करे, जैन मार्ग को प्रतिपादित करे, वहाँ कुगुरुओं को बुरा लगे तो इसमें इसका यानी प्रतिपादन करने वाले का क्या दोष है। सत्य मार्ग तो ऐसा ही है, जिसे यह भी विवेक नहीं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या है और उनसे विपरीत क्या है, वह तो मूढ़ है। जो आत्मार्थी है वह सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचान कर उनका दासानुदास होकर वर्तता है, उसे उनके प्रति ही भक्ति का लाद आता है और वह स्वप्न में भी कुदेव कुशास्त्र कुगुरु का आदर नहीं करता। इस प्रकार मुनि दशा में अंतरंग की तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर दशा में दिगंबरपना 28 मूलगुण इत्यादि के विकल्प ही होते हैं, किंतु वस्त्रादि ग्रहण करने के विकल्प होते ही नहीं। जो सर्वज्ञ की आज्ञा से विरुद्ध जाकर वस्त्रादि सहित मुनिपना मानते हैं मनवाते हैं वे भगवान की आज्ञा के चोर हैं। जैसे कोई भूपत जैसे डाकू की सहायता करे तो वह भी अपराधी है। ये भूपत कौन था मालूम है क्या नहीं? भूपत बारवटियो, हाँ, सौराष्ट्र में एक बहुत बड़ा लुटारू था, चोर था, वो लोगों को लूटता था। यानी क्या है, उनको भी जो सहायता करे, जैसे अभी आजकल हम देखते हैं ना वो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट को घर में रखना, उनको छुपा के रखना, वह भी अपराध है। वैसे यहाँ कह रहे हैं, वैसे ही जैन दर्शन से विपरीत वस्त्रादि सहित मुनिपना मनवाने वाले कुगुरु भी धर्म के लुटेरे हैं और जो उन्हें गुरु मानकर वंदनादि करते हैं वे भी वितराग मार्ग के अपराधी हैं, वे भी अनंत संसार की जेल का परिग्रहण करते हैं। क्या बताएं, अभी मैं जितना चाहूं चुप बैठना लेकिन नहीं बैठ पाता, क्या करूं। अभी हमने देखा था ना वहां आने जाने वाले को खाना खिलाते थे, ये क्या कह रहे हैं। और जो उन्हें गुरु मानकर वंदना आदि करते हैं वे भी वितरक मार्ग के अंदर, वे अनंत संसार की जेल का परिग्रहण करते हैं। हमको तो अरे इतने लोग खा के जाते इसको क्या हर जाए। हमने पूछा उनके पास पास लिया था क्या, उन्होंने कैसा अंदर आने दिया, तो चुप कोई बात नहीं करे। अनंत संसार देखो, यथार्थ जैन मार्ग क्या है उसकी पहचान करने की यह बात है। यहाँ वितराग मार्ग की मुनि दशा कैसी है उसकी ही जहाँ खबर न हो, उसे तो दर्शन की ही खबर नहीं, चारित्र पद की भी खबर नहीं, सर्वज्ञ पद की ही खबर नहीं, उसको धर्म कैसा। यहाँ दर्शन का स्वरूप दिखाते हुए आचार्य देव क्रम क्रम से बहुत स्पष्टता करेंगे। अहो, परमेश्वर पद की प्राप्ति का साक्षात मार्ग, मुनि दशा का मार्ग, यह तो अपूर्व है, यह तो अनंत तीर्थंकरों का मार्ग है, यह कोई साधारण मार्ग नहीं है। जिसको धर्म के मूल की खबर नहीं उसको धर्म नहीं, और जिसके पास धर्म नहीं उसके पास से धर्म की प्राप्ति नहीं होती। जिसको धर्म के मूल की खबर नहीं उसको धर्म नहीं, और जिसके पास धर्म नहीं उसके पास से धर्म की प्राप्ति भी नहीं। इसलिए कहते कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को क्यों वंदन करते हो? तो उनसे तो मोक्ष मार्ग की कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास ही नहीं है। हाँ, कहाँ से मिलेगा? जैसे हम देखते हैं जिसके पास केवल अर्ध वस्त्र है और वो नंगे के पास जाके बोले मुझे वस्त्र दो, मिलेगा कि नहीं उसको? क्या करते लोगों को सुनने में भी खराब लगता है, तो निर्णय कब करोगे? बहुत सुंदर बात है, जिसको धर्म के मूल की खबर नहीं उसको धर्म नहीं, और जिसके पास धर्म नहीं उसके पास से धर्म की प्राप्ति होगी नहीं। देखो, इसमें देशना लब्धि की भी बात आ गई। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिसके पास धर्म नहीं उसके पास से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, जिसकी श्रद्धा विपरीत है उसके पास से सत्य धर्म का श्रवण नहीं मिलता, यानी उसकी देशना लब्धि भी प्राप्त नहीं होगी, तो तेरे को सम्यक दर्शन कहां से होगा? धर्मात्मा से ही सत्य धर्म की देशना मिलती है। देखो, ये वितराग का यथार्थ मार्ग स्पष्ट किया है। रण चढ़े रजपूत छिपे नहीं, वैसे ही मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ चाहिए, डने मुनि कैसे होते हैं उसकी बात है। इससे विपरीत मानने वाले को धर्म की प्राप्ति नहीं होती, और ऐसे धर्म रहित जीव के निमित्त से धर्म की प्राप्ति नहीं होती। यानी स्वयं विपरीत मान्यता वाले हैं, उससे सही मान्यता की उपदेश कहाँ से मिलना है? आगे कहेंगे, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट होने पर भी सम्यक दर्शन सहित है वह भी आराधक है। देखो, अन्य को चुभे ऐसी बात है। वीरेश भाई समझ में है क्या कहते हैं? जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, यानी जिसके सम्यक दर्शन छूट गया है, निकल गया है, वो तो भ्रष्ट ही है, क्योंकि उसकी श्रद्धा में भी विपरीतता आई है। तत्वों की श्रद्धा में भी अतत्व श्रद्धान हुआ है, सच्चे देवगुरु के शास्त्र के बारे में भी विपरीत श्रद्धान हुआ है। तो कहते हैं वो तो भ्रष्ट है टोटल, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट होने पर, चारित्र से भ्रष्ट होने पर यानी जो सात्विक गुण स्थान में जीव है वो वहां से छुटकर अगर पांचवें में आ जाए, चौथे में आ जाए, तब भी क्या कहते हैं, फिर से दोबारा वह ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ सकता है। क्या कहा? चारित्र से भ्रष्ट होने पर भी जो सम्यक दर्शन सहित है, यानी कहा होगा चौथे या पांचवें में, तो वह भी आराधक है, और जो पहले में गया सो वो विराधक है। यह तो अल्पकाल में चारित्र प्रकट करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा, किंतु जिसकी श्रद्धा विपरीत है, मति ही विपरीत है, लिंग ही विपरीत है, लिंग यानी बाह्य चिन्ह, जो अभी वस्त्र आदि रखेगा तो उसके तो चिन्ह जुड़े हैं, ऐसा जीव तो दर्शन से भी भ्रष्ट है, वह तो अनंत संसार में भ्रमता है। और जो ऐसे जीव का पोषण वंदन आदि करता है वह भी भ्रष्ट है और अनंत संसार में परिभ्रमता है। अतः ऐसे धर्म सहित जीवों को धर्म के निमित्त से कैसे वंदे? अर्थात ऐसे धर्म रहित जीवों की वंदना योग्य नहीं है। यह अष्टपाहुड़ की दूसरी गाथा चलती है। धर्म का मूल दर्शन है, यह बात चलती है। साक्षात धर्म तो चारित्र है और उसका मूल सम्यक दर्शन है, उसकी प्रधानता का यह वर्णन है। तद उपरांत यहाँ दर्शन कहते ही निर्ग्रंथ भावलिंगी संत को देखना ऐसा अर्थ भी लिया है। अब यहाँ धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म का स्वरूप क्या है और दर्शन का स्वरूप क्या है वह जानना चाहिए। अतः यहाँ उसका शास्त्रानुसार कुछ वर्णन लिखते हैं। धर्म अर्थात क्या, कि आत्मा का संसार दुख से उद्धार करके सुख अवस्था में स्थापित करे वह धर्म है। आत्मा का क्या, आत्मा को, इसलिए गड़बड़ हो गई। आत्मा का उद्धार करके संसार से उद्धार करके सुख में धारण करे वह धर्म है। इसके अतिरिक्त देहादि की क्रिया पुण्य पाप अथवा बाहर के संयोग में धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का वह भाव है कि जिस भाव से आत्मा संसार से पार हो और मोक्ष सुख प्राप्त करे, ऐसे धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। दर्शन मूलो धम्मो, अर्थात सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। किंतु यहाँ दर्शन अर्थात देखना कहा है, किसे देखना, धर्म की मूर्ति ऐसे भावलिंगी संत मुनि उनको देखना वह दर्शन है। मैं सर्वज्ञ भगवान के समान संपन्न आत्मा हूँ ऐसे भान पूर्वक उसी में लीनता होने पर मुनि दशा का चारित्र प्रकट हुआ। वहाँ बाह्य दशा भी वस्त्र रहित दिगंबर हो जाती है और विकल्प भी 28 मूल गुणों का होता है। ऐसे मुनि धर्म की मूर्ति है और उनका दर्शन देखना वह दर्शन है। सिद्धपने जिसमें जिस्म प्रसिद्धपने शाबाश प्रसिद्धपने जिसमें यानी जिस मत में, जिस मार्ग में, जिस अभिप्राय में धर्म का ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। वीतराग जैन मार्ग जैन मत में ही यथार्थ धर्म का ग्रहण होता है, अतः जैन मत यानी जैन दर्शन ही यथार्थ धर्म है चाहिए कि जिससे संसार का अभाव होकर मुक्ति होती है। अतः ऐसे जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शन यथार्थ नहीं है। आत्मा चिदानंद स्वभावी है, उसमें एकाग्र होकर पुण्य पाप का अभाव करके मुक्ति प्राप्त करने का नाम धर्म है। वह धर्म जहाँ प्रसिद्धपने यानी व्यक्तपने दिखलाई दे वही यथार्थ दर्शन है। ऐसा धर्म प्रसिद्धपने कहाँ दिखता है, के वीतराग दिगंबर जैन दर्शन में ही यथार्थ धर्म है। इसके अतिरिक्त जगत में अन्य कहीं यथार्थ धर्म का दर्शन नहीं है। देखो कितने ही जीवों को यह बात सुनते ही कंप कंपी छुटती है। ये सत्य बात सुनते ही ध्रुज चाहिए ना, ध्रुज नहीं ध्रुज उठते हैं। जैसे नेमिनाथ भगवान की शंकर ध्वनि से पृथ्वी के कंप कंपी हो गई, वैसे ही अभी यह सत्य बात बेधड़क पने प्रसिद्ध में आने से कितने ही लोग ध्रुज जाते हैं। क्या समझ में नहीं, ये गुजराती शब्द है ध्रुजी छे, ये हिंदी में ध्रुज नहीं बोलते हैं। गुजराती में क्या है, हाँ हिंदी में ध्रुज नहीं है, भयभीत हो जाते हैं कहना चाहिए ना, हाँ तो ये ध्रुजी जाय छे। किंतु भाई सत्य तो धैर्य पूर्वक समझने योग्य है। वीतराग दिगंबर जैन मत में जो यथार्थ धर्म है उसका स्वरूप क्या, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म को धारण करने वाले दिगंबर मुनि वे धर्म की मूर्ति है, जिनको तीन कषाय के अभाव से अंतरंग अंतर में ऐसी लीनता हुई है कि उपशम रस का प्रवाह परिणति में छलकता है, ऐसी मुनि दशा है। ऐसे मुनि दशा वालों को ऐसी मुनि दशा वाले को द्रव्य देव पुरुष का ही, हे भगवान, ऐसी मुनि दशा वाले को द्रव्य वेद पुरुष का ही होता है। स्त्री का शरीर हो, ऐसी मुनि दशा हो जाए, ऐसा नहीं बनता, तथा शरीर की वस्त्र सही दशा हो और अंदर मुनिपना हो जाए, ऐसा भी नहीं बनता। कितनी मतलब कन्फर्मली बात बताई है गुरुदेव ने। क्या कहा? मुनि दशा वाले को द्रव्य वेद पुरुष का ही होता है। स्त्री का शरीर हो और ऐसी मुनि दशा हो जाए, ऐसा नहीं बनता, तथा शरीर की वस्त्र सही दशा हो और अंदर मुनिपना हो जाए, ऐसा भी नहीं बनता, तथापि मात्र शरीर की दिगंबर दशा वह कोई मुनिपना नहीं, किंतु अंदर में ज्ञानानंद स्वभाव के भान पूर्वक उसमें लीनता पूर्वक मुनि दशा होती है। वहाँ 28 मूल गुण होते हैं, वह मुनि दशा का व्यवहार है। वहाँ बाहर में भी दिगंबर दशा ही होती है। ऐसी जो मुनि दशा है वह धर्म की मूर्ति है, वही वंदनीय है। जिसमें ऐसे धर्म की मूर्ति प्रसिद्ध है वह दर्शन है, अर्थात वितरागी दिगंबर जैन मत ही दर्शन है। अभी महाविदेह क्षेत्र में ऐसा एक ही जैन दर्शन प्रवर्त रहा है। वहाँ बाह्य में श्वेतांबरादि भेद नहीं है। अच्छा,
उन्नाव सर्पिणी और पंचम काल है, तो यहाँ अन्य मतियों की इतनी विविधता बात देखी जाती है। अन्यत्र एक जैन धर्म ही प्रवर्तता है।
स्वर्गों में भी ऐसा ही है, वहाँ बाह्य में प्रकटपने जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शन नहीं होते। प्रकटपने लिखाओ। ऐसे दिगंबर जैन मत के अतिरिक्त अन्य भी मत पाखंड है। जो जीव वस्त्र का एक धागा भी रखकर मुनिपना मानते हैं अथवा मनवाते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है और उस मिथ्यात्व का फल निगोद है। वस्त्र से ही सम्यक दर्शन होता है, पंचम गुरु स्थान होता, किंतु मुनिपना तीन काल में भी नहीं होता। देखो, यह कथन आज का नया नहीं है, किंतु 2000 वर्ष पूर्व का गुंदकुंदा आचार्य देव का यह कथन है। वे पंच परमेष्ठी पद में शामिल थे और महाविदेह क्षेत्र में साक्षात सिमंदर परमात्मा के पास गए थे, उनकी यह वाणी है। अनादि से तीर्थंकर यही मार्ग प्रतिपादित करते आए हैं। क्या कहते हैं? वस्त्र सहित मुनिपना मनवावे, राग से धर्म मनवावे और स्त्री को मुनि दशा मनवावे, ये सब लौकिक मत है, अर्थात भगवान के लोकोत्तर मार्ग से विपरीत मत है। धर्म धर्म तो जगत में सभी लोग करते हैं, अपनी अपनी कल्पना अनुसार तो धर्म को सभी मानते हैं, किंतु भगवान सर्वज्ञ देव और उसकी परंपरा के अतिरिक्त धर्म का यथार्थ ज्ञान दूसरों को नहीं होता। अभी तो सर्वज्ञ के नाम से भी कल्पित शास्त्रों की रचना करके विपरीत मत चल रहे हैं, किंतु शास्त्र का एक अक्षर भी उठाए वह अनंत संसारी होता है। उत्थाए यानी क्या? ये कैसा हिंदी ट्रांसलेशन किया? हाँ, पलटा है, बदला है। ओ भगवान सर्वज्ञ देव की जो परंपरा है वही एक यथार्थ मार्ग है। श्वेतांबरादि में जो शास्त्र है वह भगवान की वाणी तो है ही नहीं, मुनियों की अथवा समकीति की वाणी भी नहीं है, किंतु कल्पित रचना है, उसमें धर्म का यथार्थ स्वरूप नहीं है।
उत्थापे चाहिए ना?
उत्थापे भी
उत्थापे
ये गुजराती शब्द है। अक्षर भी बदली करे पलटा है जिसको कहेंगे हम। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर भगवान महावीर पहले तो देवनंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए और फिर वहां से बदलकर त्रिशला माता के गर्भ में अवतरित हुए। इस प्रकार श्वेतांबर मत भगवान के दो माता और दो पिता को होना कहता है, यह महाविपरीत है। यह तो तीर्थंकर का अवर्णवाद है, अर्थात दर्शन मोह के आश्रव का कारण है। अरे भगवान के संबंध में ऐसी बात सुनने योग्य भी नहीं है। सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से जो मार्ग चलता है वस्तुतः उसमें ही धर्म की यथार्थ प्ररूपना है। ये ऐसा कोई मत है आपको मालूम है क्या? ये भगवान महावीर के ब्राह्मण हाँ ऐसा मानते आपको मालूम है? अच्छा मुझे नहीं मालूम था। हाँ इनको और डिटेल में मालूम है। हाँ इसलिए नहीं सुनते। चलो चलो भाई आप कह रहे हैं कि सुनने योग्य नहीं है, फिर भी अगर उनका मत में कोई ऐसी गड़बड़ है और उसको हमें सही समझना है तो उसका क्या गड़बड़ी है वो तो समझे। चलो चलो। अज्ञानी जीव अपनी बुद्धि द्वारा अनेक प्रकार की कल्पनाओं से जड़ की क्रिया में अथवा रागादि में धर्म मानकर धर्म की विपरीत प्ररूपना करते हैं। जिन मतों और उसमें भी यथार्थ दिगंबर मत वही सर्वज्ञ की परंपरा से चलता है और इस कारण उसमें ही धर्म के स्वरूप का यथार्थ निरूपण है। सर्वज्ञ की परंपरा से चलते धर्म में निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार का धर्म कहा है और उसकी प्ररूपना चार प्रकार से की गई है। मूल धर्म तो एक ही प्रकार है का है किंतु उसकी प्ररूपना चार प्रकार से है जो इस प्रकार है। वस्तु स्वभाव धर्म, उत्तम क्षमादि दस प्रकार का धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म और जीव दया रूप धर्म। देखो ये चार प्रकार की शैली से धर्म की प्ररूपना है किंतु इन चारों में निश्चय से धर्म तो एक ही प्रकार का है। यहाँ जीव दया की व्याख्या भी कोई अलग ही की प्रकार की जाएगी। पर जीवों को बचाने का प्रभाव तो राग है, वह वास्तव में धर्म नहीं है। जैसे ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाले मिथ्या दृष्टि है, वैसे जीव को परजीव का कर्ता मानने वाले भी मिथ्या दृष्टि है। इसका विशेष स्पष्टीकरण आगे आएगा। अब ये जो धर्म के चार प्रकार कहे उनमें भी निश्चय से साधे तो धर्म का एक ही प्रकार है उसका विवेचन करते हैं। यानी यहाँ क्या कहा, जीव दया रूप जो धर्म है वो निश्चय से तो ऐसा ही होना चाहिए कि अपने स्व की दया करना वही जीव दया है। अब आगे बताएंगे ऐसा कह रहे हैं। जीव नामक वस्तु है और ज्ञान दर्शन परिमन्नमण में चेतना उसका परमार्थ स्वभाव है। ऐसी चेतना सर्व विकार से छूटकर शुद्ध स्वभाव रूप पर्ण में वह उसका स्वभाव है और उसका नाम धर्म है। राग द्वेष रूप भाव होते हैं वे वस्तुतः चेतना का स्वभाव नहीं है। हर्ष शोक के भाव भी चेतना का स्वभाव नहीं है किंतु अंतर के ज्ञानानंद स्वभाव में एकाग्रता होकर जो ज्ञान दर्शन को निर्मल क्रिया होती है वह ज्ञान दर्शन की न वह चेतना का स्वभाव है और वही वस्तु स्वभाव होने से धर्म है। राग द्वेष रूप कर्म चेतना और हर्ष शोक रूप कर्म फल चेतना भी धर्म नहीं है, किंतु राग रहित जो ज्ञान दर्शन की क्रिया होती है वही ज्ञान चेतना ही धर्म है। मूढ़ लोग कहते हैं कि यह नया धर्म निकला, किंतु भाई यह तो अनादि का धर्म है। अनादि से तीर्थंकर कहते आए और उसे जीव साधते आए, किंतु तूने सत्य कभी सुना नहीं, अतः नया लगता है। स्वयं ने पूर्व में ऐसा धर्म समझा नहीं था और अब समझा तो स्वयं के लिए नया कहा जाता है, किंतु जगत में तो अनादि से यही मार्ग चल रहा है। जितने भी जीव मुक्ति प्राप्त हुए वे इसी मार्ग से प्राप्त हुए हैं, इसके अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई मार्ग जगत में है ही नहीं। आत्मा की चेतना पुण्य पाप रहित तो होकर शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वरूप परिणमे वह जीव का धर्म है। सम्यक दर्शन यह जीव वस्तु का त्रिकाली स्वभाव है। ओ लिखता कुछ है और मैं पढ़ता कुछ हूँ। ज्ञान दर्शन ये जो है यह जीव वस्तु का त्रिकाली स्वभाव है। ये जीव वस्तु एक साथ लिखना चाहिए ना, तो जीव वस्तु का तो जीव क्यों डाला ऐसा लगता है ना। जीव वस्तु का त्रिकाली स्वभाव है, परंतु उस ज्ञान दर्शन चेतना का राग में एकाग्र होकर विकार रूप परिणमना अधर्म है, और उस ज्ञान दर्शन चेतना का स्वभाव में एकाग्र होकर और उस ज्ञान दर्शन चेतना का स्वभाव में एकाग्र होकर ज्ञान दर्शन चेतना का चेतना के स्वभाव में एकाग्र होकर शुद्ध रूप से परिणमना धर्म है। ये कैसी हिंदी है, मुझे नहीं। फिर से, उस ज्ञान दर्शन चेतना का स्वभाव में एकाग्र होकर शुद्ध रूप से परिणमना वह धर्म है। देखो यह जैन दर्शन, जगत में प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र परमेश्वर शक्ति से भरा हुआ है। ज्ञान दर्शन स्वभाव में एकाग्र होकर पुण्य पाप का परिहार करे, ऐसा धर्म का स्वरूप है। यही जैन दर्शन है। इससे विपरीत धर्म का स्वरूप दर्शाने वाले सभी मत विपरीत है। आत्मा अपने ज्ञान दर्शन चेतना परिणाम के सिवाय जगत के पदार्थों में कुछ करे, यह बात हराम है, खोटी है। यानी आत्मा का स्वभाव क्या है तो जानना ज्ञान दर्शन में है, और वह अन्य पदार्थों में कुछ गड़बड़ करे यानी उसका परिणमन करे करावे, ऐसी बात सही नहीं है। आत्मा एक तिनके को दो टुकड़े भी नहीं कर सकता। तिनका समझ में है, सूखा हुआ घास का एक टुकड़ा, ऐसा मतलब जो बोलते हैं ना, तिनके के दो टुकड़े भी नहीं कर सकता। उसमें एक समय में तीन काल तीन लोक को जानने की सामर्थ्य है, किंतु तिनके को दो टुकड़े कर सके ऐसे आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। यह तो जड़ की अजीव की स्वतंत्र क्रिया है, वह तो जड़ का स्वभाव है, परिणमन है। साधक धर्मात्मा को देवगुरु धर्म के प्रति भक्ति बहुमान का भाव आता है, उस भूमिका में वैसा भाव आए बिना रहता नहीं। सर्वज्ञ भगवान की प्रतिमा के प्रति भी पूजा का भक्ति का भाव आता है, उसे न माने तो स्वच्छंदी है, किंतु वह राग है, वह शुभ राग भी धर्म नहीं। धर्म तो आत्मा की शुद्ध आत्मा की चेतना शुद्ध वितराग परिणाम पने की शुद्ध वितराग परिणाम पने परिणमे वह है। क्या कहा? धर्म किसको कहना? तो कहते हैं कि आत्मा की जो चेतना है वह चेतना शुद्ध वितराग परिणाम पने परिणमे वही है। देखो यहाँ मानस स्तंभ तय ये दंभ। चलो ठीक है, तैयार हो रहा था तब बेगन यानी गाड़ी जिससे पत्थर आना था। अच्छा, बैंगन यानी वो जो बैलगाड़ी होती है। हाँ अच्छा, ओह करे करे करे, रेलवे की बैंगन बैंगन। को आने में विलंब हुआ, वेगन शीघ्र आवे ऐसा भाव तो सबको था, किंतु वह वेगन की क्रिया कोई आत्मा के हाथ की बात नहीं। वेगन तो दूसरे रास्ते पर लग गया और अपने काल में अपने कारण से आया। तथापि धर्मी को शुभ भाव आता है, देवगुरु शास्त्र की भक्ति प्रभावना का भाव आए बिना रहता नहीं। ये जहाँ लिख रहे हैं धर्मी को शुभ भाव आता है, किस बात का? वो जल्दी जल्दी आवे और काम न पड़ जाए। अभी मुझे उससे एक बात याद आई, जब हम कभी 2-4 साल पहले जयपुर गए थे, तो वहाँ किसी ने हमारे यहाँ से बोला कि भाई आप जाके मूर्ति लेके आना, हमारे लिए मूर्ति लेके आना, जैन नहीं नहीं जैन मूर्ति में हम मिलते हैं। तो वहाँ एक मूर्ति मोहल्ला है, तो वहाँ नीचे मान लो ना ऐसे 10-10, 8-8, 6-6 फुट की ऐसी मूर्तियाँ ऐसे पद्मासनस्थ होती है, और हमें तो चाहिए थी छोटी छोटी मूर्ति 8-9 इंच वाली। तो हमने कहा वो देखो वो ऊपर है ना, वो जरा दिखाओ। तो वो आदमी फट से पैर पे है, हाथ रखे पैर रखा, फिर इधर एक रखा, फिर माथे पे ऐसा हाथ रखे वो मूर्ति निकाला। तो अपने को तो ऐसा लगता है अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भगवान के ऊपर पैर दे रहे हैं। अभी तो प्रतिष्ठित भी नहीं, वो तो उसके लिए भी पत्थर ही है और अपने लिए भी वो पत्थर है, लेकिन अपने को ऐसा लगता है ना भगवान की मूर्ति, और उसको तो उसमें कोई, अब क्या बताएं। हम तो जहाँ जैन शास्त्र छपते हैं वहां पर भी गए थे कि भाई हमको जरा फला फला चीज है, उसको जरा थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके जल्दी चाहिए। बम्बई की बात नहीं, जयपुर की। तो काम करने वाले क्या कर रहे हैं, ऐसा वो पैकिंग करके सब रखे हैं, उसी पे बैठ के दूसरा काम कर रहे हैं, और इधर मुंह में बीड़ी है। ऐसा लगता है कि कैसा हम जिनवानी को नीचे रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और वो तो यहाँ जो कह रहे ना शुभ भाव, तथापि यहाँ तो धर्मी की बात है, फिर भी हमारे तुम्हारे में भी ऐसे भाव होते हैं कि ये क्या चल रहा है। क्या कहा देखो, तथापि धर्मी को शुभ भाव आता है, देवगुरु शास्त्र की भक्ति का प्रभावना का भाव आए बिना रहता नहीं। उस शुभ भाव के काल में ही धर्मात्मा को अंतर स्वभाव की एकाग्रता होकर ज्ञान दर्शन चेतना जितनी निर्मल रूप प्रणमती है उतना धर्म है। इस प्रकार जो आत्मा का चेतना स्वभाव है उसका राग रहित निर्मल स्वभाव रूप प्रणमना वह धर्म है। इस प्रकार वस्तु स्वभाव धर्म इसकी व्याख्या की। यानी ये वस्तु स्वभाव धम्मो का कहा था ना पहला पॉइंट, ऐसे धर्म की प्राप्ति एकमात्र दिगंबर जैन दर्शन में ही हुए। अब दूसरा प्रकार बताते हैं, यहाँ चारों प्रकार प्रकारों में परमार्थ धर्म तो एक ही प्रकार का है, यह बताना है। उत्तम क्षमादि धर्म अर्थात आत्मा अपने चेतना स्वभाव में स्थिर होने पर क्रोधादि कषाय रूप भावों रूप नहीं परिणमता, वह उत्तम क्षमादिक धर्म है। क्षमादिक इसमें किसको लेना? हाँ, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव आदि जो है ना दस धर्म, उसकी बात ले रहे हैं। इसमें भी शुद्ध चेतना रूप धर्म ही आया, शुद्ध चेतना रूप प्रणमन हुआ, वह धर्म में उत्तम क्षमादि धर्म भी आ जाते हैं। इन चार प्रकारों में धर्मों में प्ररूपणा की शैली का भेद है, बाकी परमार्थ धर्म कोई चार प्रकार का भिन्न भिन्न नहीं है। वह शुद्ध आत्मद्रव्य के आश्रय से एक ही प्रकार का है। आत्मा क्रोधादि कषाय भाव रूप न पन्न में और अपने चेतना स्वभाव में स्थिर होकर वितरागी क्षमादि भाव रूप रहे, उसका नाम धर्म है। इसमें भी शुद्ध चेतना रूप धर्म ही आया है। वस्तु स्वभाव रूप धर्म कहो अथवा उत्तम क्षमादिक रूप धर्म कहो, इन दोनों में शुद्ध चेतना रूप धर्म एक ही प्रकार का है। इधर एक अहिंसा परमो धर्म नहीं लिया, चार ही बात बताएं। आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव है और रागादि भाव उससे विरुद्ध है। उन रागादि से लाभ मानने वाले को आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है, वह अनंतानुबंधी क्रोध है। और आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव का आश्रय करके क्रोधादि का नाश करना, वह वितरागी क्षमा है और वह धर्म है। आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव का अनादर करके राग का आदर करना, उससे लाभ मानना, यह अनंतानुबंधी क्रोध है। अभी ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की बात बताते हैं। उसके एक ही बात है कि आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव का अनादर करके राग का आदर करना और उससे लाभ मानना। आत्मा के स्वभाव के अतिरिक्त पुण्य पाप की वृत्ति को बड़ा मानना, उससे लाभ मानना, यह अनंतानुबंधी मान है। आत्मा के सरल चैतन्य स्वभाव में वक्रता करके उसे राग रूप मानना, राग से लाभ मानना, यह अनंतानुबंधी माया है। देखो ये तो मान्यता पर ही लगा था कि वो अनंतानुबंधी माया है, यानी राग से धर्म आत्मा को राग रूप मानना और राग से धर्म मानना, क्या बात, लाभ मानना। आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव पुण्य पाप के परिग्रह रहित है, उसके बदले उसे पुण्य पाप के परिग्रह वाला मानना, उससे लाभ मानना, वह अनंतानुबंधी लोभ है। आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव को पहचान कर, हाँ, यानी ऐसा है ना, इसमें क्या उनकी मान्यता है कि ये राग रूप आत्मा है, यानी कभी कभी तो ऐसा ही मानते हैं ना कि शुभ भाव करना अच्छा है। हाँ, वह शुभ भाव करना अच्छा जो मानते हैं तो वो राग है ना एक प्रकार का, तो राग जो है वो राग रूप को आत्मा राग स्वरूप है ऐसा मानकर, तो बहुत लोग भी ऐसा कहते हैं ना कि भाई जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक तो शुभ भाव करने चाहिए वाली जो टेंडेंसी है वो उससे लाभ मानते हैं ना, तो वो कहते हैं उससे लाभ मानना वो मायाचारी है, क्योंकि जैसा आत्मा है वैसा न मानकर उसका स्वभाव अन्य रूप से मानना वह मायाचारी है। और वो कैसी है? अनंतानुबंधी वाली। अभी बाकी की बात हम कल लेंगे, यहाँ रुकेंगे ये पहले चार पॉइंट के बाद। चावानी के ज्ञान तय सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकनमो सदा देत हो। नलिन भाई,